यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भेदु तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमाम् त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम् शरणम्। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम श्री गुरु पाद पद्म की श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात त्रिदंडी पादगण वैष्णव वैष्णवी एवं उपस्थित सज्जन मंडली, जैसा कि अपने बेटी मधु ने वेणु गीत के संबंध में बतलाया, ये सब श्रीमद् भागवत के प्राण है। गोपी गीत, वेणु गीत, गोपी गीत और भ्रमर गीत, इसमें अधिक प्रसिद्ध है गोपी गीत। वेणु गीत ये पूर्व राग का है, गोपी गीत मिलने पर भी कृष्ण कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो गए उस समय का, और जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं उस समय गोपियां विरह में उनको दिव्य उन्माद इत्यादि होता है, उनका जल्प प्रजल्प अनुजल्प सुजल्प अभिजल्प इत्यादि है। श्रीमद् भागवत से इन तीनों को यदि निकाल दिया जाए तो श्रीमद् भागवत रस ग्रंथ नहीं रहेगा, तब निगम कल्प तरु गलितम फलम यह नहीं होगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसके पहले कृष्ण का वर्षा ऋतु में बिहार का वर्णन किया, कभी रिमझिम वर्षा हो रही है वृंदावन, कभी मूसलाधार वर्षा हो रही है, नदियां तालाब यमुना मानसी गंगा इत्यादि जल से उमड़ गए हैं, पानी मटमैला हो गया है। जब ही शरद काल आया नदियों का पानी गंभीर और स्वच्छ, वैसे तो ग्रीष्म ग्रीष्म शरद ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत बसंत छह ऋतु में है, किंतु वृंदावन में सब समय मधुर बसंत ऋतु छाई रहती है। सब ऋतु में ऋतुओं में फूल और फल देने वाली लताएं और वृक्ष सुशोभित हो जाते हैं। इत्थम स्वरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधि, नदियों का तालाब पानी इत्यादि स्वच्छ हो गया, कुमुदनी और कमल के फूल खिल रहे हैं चारों, पास में उनके तटों पर बेली चमेली जूही इत्यादि जितने सुगंधित फूल हैं मालती सब भर रही है। सुगंध से वातावरण कुछ महक सा रहा है, सुगंधित हो रहा है। न्यवशत वायु न वायु ने उस सुगंध को लेकर चारों तरफ में भर दिया, चारों तरफ वृंदावन। और उसी समय में वृंदावन की शोभा देखने के लिए सब गोपाल को अच्युत कृष्ण गोप गायों बछड़ों इत्यादि के साथ में एक वन से दूसरे वन में शोभा देखते हुए विचरण करने लगे। गाय तो अपने आप चर करके आघा जाती हैं और कृष्ण क्या करते हैं, कुसुमित वन राज सुष्म भृंग द्विजकुल घुष्ट सरह शरण महित्र, ऐसे सुंदर वातावरण में सुगंधित वृंदावन में यहां पर बेली चमेली इत्यादि के फूल सब खिले हैं, सुगंध चारों ओर में फैल रही है, लताएं वृक्षों का आलिंगन कर रही हैं, मखमली हरी घासें चारों तरफ पृथ्वी में छाई हुई हैं, उसमें कुसुमित वनराज ऐसे कुसुमित सुगंधित वृंदावन में मदमत इन सुगंधित फूलों के मद से मदमत मधुपान करने वाले जो भ्रमर हैं और उनके साथ में द्विजपुर जितने भी पक्षी मयो के का कर रहे, कोयल कुहू कुहू कर रही और जितने भी पक्षी हैं पपीहे इत्यादि ये एक डाली से उछल करके दूसरी डाली पर बैठ रहे हैं और ऐसा कलरव करते हैं मधुर मधुर मानो सभी राधे 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 कर रहे हैं। उस समय में सुगंध से चारों तरफ में दिशाएं शरीर नदियां और गोवर्धन की तट तट प्रदेश में इत्यादि चारों तरफ में भर रहा है। उस समय में मधुपति मधु माने बसंत ऋतु भी होता है, जो मधुर के द्वारा बसंत ऋतु के द्वारा जो सेवनीय मधुपति श्री कृष्ण और गाही चारे अनगा सह पशुपाल बल सुकून वे कृष्ण गायों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, उनकी शोभा देखते हुए सह पशु पाल बलश्च चुको जुबे एक कदम पर वृक्ष के नीचे टेढ़े कदम टेढ़ा कदम ऐठा कदम उस पेड़ के ऊपर से अपने पीठ को लगाकर विभंग ललित ठाम से एक पैर को दूसरे पैर को देकर चुकुज वेणु वेणु बजाए सह पशुपाल जितने उनके सखा थे दाम सिदाम सुदाम वसुदाम स्तो कृष्ण लवंग इत्यादि बलदेव प्रभु सबने वेणु बजाई कृष्ण के साथ, कोई शिंगा भी बजा रहे हैं किंतु वेणु की वहां पर प्रधानता रही। वो वेणु जो बजाई कहां बजाई वन में वो चारण करते समय और हवा के तरंगों पर बयार के तरंगों पर कृष्ण की मधुर मुरली ध्वनि वेणु ध्वनि तरंगों से तरंगायित होकर के कहां पहुंची। गोपियां जहां पर घर पे बैठी थी दोपहर में अपने अपने समूह में सजातीय सखियों के सहेलियों के साथ में वहां पर ध्वनि पहुंची। वैसे तो वृंदावन में दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस के आश्रय हैं, भक्त लोग हैं, वात्सल्य रस की माँ यशोदा और जितनी माताएं हैं, श्रीदाम सुबल सख्य रस के हैं, दास्य रस के भी चित्रक पत्रक हैं, शांत रस वृंदावन में नहीं है, शांत रस नहीं, वो आच्छादित रहता है तो जरूर किसी न किसी बछड़े को किस रूप में किस रस में रखा जाएगा। कृष्ण के सखा है, उनके अंगों का स्पर्श कर पुलकित हो उठते हैं। गैया माताएं हैं, वात्सल्य रस की मूर्तिमान विग्रह है। पेड़ पौधे जितने भी वहां पर हैं, कोई जड़ नहीं है, उनके भी अपने भाव हैं। कृष्ण की मुरली ध्वनि सुन करके हो या उनका रूप देख करके हो, सभी में आनंद उच्छलित होने लगता है। ऐसा कोई नहीं है जो किसी प्रकार से कृष्ण का संपर्क हो, कृष्ण का रूप देखे, उनकी मधुर ये सब सुने, घनी ध्वनि इत्यादि सुने और विभावित न हो जाए सभी। किंतु जैसे मेघ गर्जन सुनकर समुद्र अपने तट भूमि को छोड़ करके और आगे तक बढ़ जाता है, बेला भूमि को पार करके, उसी प्रकार से कृष्ण के वेणु रूपी गर्जन को सुनकर के वेणु नाद को सुनकर गोपियों का विशेष करके हृदय भावोच्छ्वास से भर उठता है, सभी को आनंद तो होता है। किंतु मेघ गर्जन से जैसे समुद्र स्फीत हो जाता है, ऐसे ही गोपियों का भाव सिंधु अत्यंत तो उच्छलित होने लगता है। इस पूर्व राग में अभी गोपियां कृष्ण से मिल नहीं सकती, क्यों दूर से देखती हैं, बड़ी ध्वनि उनकी सुनती हैं, उनकी चर्चाएं तो करती हैं, मिलन में बहुत सी बाधाएं हैं। ये गोपियां गोपियों में तीन प्रकार की गोपियां हैं, राधा जी के कायब भी हुए, एक नित्य सिद्ध गोपियां और एक साधनचरी गोपियां। कायब हुई गोपियां ललिता विशाखा इत्यादि रूपमंजरी, ये राधा जी के कायब भी हुए, राधा जी से अलग नहीं है। और नित्य सिद्ध बलदेव जी से प्रकटित हैं, ये कभी बद्ध नहीं हुई, कृष्ण लीला में इनका प्रवेश है। और साधनचरी जौतकी और जौतकी भेद से ऋषि ऋषि लोग मुनिचर मुनिचरी और जौथकी सुतिचरी उपनिषदचरी इत्यादि बहुत सी गोपियां हैं। ये जीव तत्व हैं, साधन के द्वारा, कठोर साधन के द्वारा गोपी भाव को प्राप्त हुई। अब वहां पर जीव तत्व नहीं रह जाता, वो परिकरित में परिकरों में भी परिकरित होती है। गोपियों में और भी कुछ एक भाग है, ललिता विशाखा इत्यादि राधा जी की काय भी हुए, उनकी सेवा करती हैं, किंतु उनकी सेवा में कुछ कुछ एक कमी है, कमी नहीं, वो रूपमंजरी इत्यादि से श्रेष्ठ हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ होने पर भी असंकोच भाव उनका नहीं है, उनका संकोच भाव है। राधा कृष्ण जा रहे हैं वो पूछ करके जाएंगे रूपमंजरी से ये वहां जाना है कि नहीं, अभी उनका नहीं सह। राधा जी और वो दोनों एक ही हैं, इनकी रति को उल्लास रति कहते हैं, भाव उल्लास या उल्लास रति, भाव उल्लास रति कहते हैं। जितने भी साधनचरी ये गोपियां हैं या नित्य सिद्ध हैं, ये भावोल्लास रति की है, इसे ऊपर नहीं उठ करके ललिता विशाखा जैसा भाव नहीं आएगा, काय भी वाला भाव नहीं आएगा। बड़ी गंभीर तत्व है, जो लोग इसमें अधिक प्रवेश करना चाहते हैं वो सब इसका अनुशीलन करेंगे हमारे ग्रंथों से, रूप गोस्वामी के भक्ति स्वामी सिंदूर ज्योतिर्मयी इत्यादि ग्रंथों से। बहुत ही ध्रुव विषय है, विशेष करके उज्ज्वल दिन में सबके लिए संभव पर नहीं है। वो सब चीज जितने लक्षण है इन सब में है, तो कुसुमित बनराज सूषमी भ्रमर पागल हो गए, मदमत्त हो गए, और साथ साथ में कोयल तिपहिये मोर इत्यादि के का के मैंने मयूर कह रहा है के ये कौन है, और मयूर कर ये का ये राधा जी कौन है। तुम्हारे कृष्ण से राधा जी श्रेष्ठ हैं, मयूरी कहती है। बहुत से इसके छिपे हुए सब गुण भाव है, इसलिए संक्षेप में बतलाऊंगा, नहीं तो बेणु भी समाप्त नहीं। एक चीज को समझिए, तो ये गोपियों में ब्रज के जितने भी गोपियां हैं कृष्ण के साथ में किसी की विवाह नहीं हुआ। कात्यायनी देवी की जिन लोगों ने पूजा की और वर मांगा कि कृष्ण ही हमारे पति हो, क्या है कात्यायनी महामाये महाजोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम पति में, मैं तो पति नहीं कहता उपपति में गुरु ते नमः। पति में नहीं, तो उनका पति भाव भी उपपति का था, विवाह उनका हुआ वहां द्वारकापुरी में। किसी भी गोपी के साथ में कृष्ण की जो वो वरदान भी ले चुकी हैं उनकी शादी नहीं, वो किसी न किसी रूप में पारकीय ही है। पारकीय माने क्या, शादी नहीं हुई किंतु प्रीति है, प्राण बल्लभ मेरे हैं, इस प्रकार का भाव। तीन जितनी गोपियां हैं ये श्रीमद् भागवत में सर्वत्र इस उपपति भाव का वर्णन किया गया है, अपने पतियों को छोड़ करके और कृष्ण से मिली रास इत्यादि हुआ अपने पतियों को छोड़ करके। इसलिए जितनी भी वहां की गोपियां हैं परकीय भाव की है, परकीय भाव होने पर भी इन गोपियों का भाव एक अवहित्था होता है, भाव को छिपाना, किसी को गंध न लग जाए ये कृष्ण हमारे प्रिय हैं, हमारे बल्लभ हैं, हमारे प्राण प्रियतम हैं, इसकी गंध किसी को न लगे। इसलिए गोपियां अपने भावों को छिपाकर वेणु का तो वर्णन कर रही हैं, किंतु अपने भाव को ये छिपा रहे हैं कि हमारे वो सबसे प्राण बंधु हैं, इसे अवहित्था के द्वारा छिपा रही हैं, किसी को गंध न लगे। यहां तक कि अपनी सहेलियों को भी न लगे, सहेलियां तो समझ जाती हैं किंतु सहेलियां भी न समझे जी हमारा प्रेम इस कृष्ण के साथ में परकीय पुरुष से है। इसलिए अपने भावों को इस प्रकार से छिपाकर अवहित्था से कह रही हैं कि उनका समझना, उनका अर्थ समझना बड़ा भारी गंभीर है, कठिन है। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी तीनों ने वर्णन किया है, हे गोपियों तुम प्रसन्न हो, तुम कृपा करो जो तुम्हारे इन भावों का हम अर्थ समझ सके। तुम कृपा नहीं करेगी तो तुम्हारे भावों को, गंभीर भावों को शंकर और ब्रह्मा और सुखदेव गोस्वामी के लिए भी समझना बड़ा भारी कठिन होगा। तुम ही यदि जन सही जाने जो देव जनाए, इसलिए तुम अपने भावों को खुद ही कृपा करो। इसे इसका इसलिए इसके कितने अर्थ होंगे एक एक श्लोक के गोपियों के भावों का, और वो भी गोपियों के मनोभाव के अनुसार होगा कि नहीं, जो जितने में है उतने में ही वो समझता है। इसलिए कह रहे हैं ये अपने भावों को वो छिपा रहे, जो कोई ये ना समझे जे कृष्ण हमारे प्रिय है। तद ब्रज स्त्रिय असूत्र वेदगीतम स्मरोदय कश्चित परोखम कृष्णस्य सखिभ्यनुवर्णय। तद ब्रज स्त्रिय वो हवा के समीर के झोंके से कृष्ण की का वेणुनाद, वेणु किस लिए कहा गया, पुल्लिंग कहा गया, बंसी नहीं है इसमें, कहीं भी बंसी नहीं है, मुरली नहीं है, वेणु पुरुष और पुरुष होकर के भी गोपियों के अधिकार की जो बात है वो स्वयं उनके सामने उनकी हंसी उड़ाता हुआ कृष्ण का धराम पान कर रहा। आगे ये वर्णन में आएगा, तद ब्रजस्त्रिय आश्रुत वेणुगीत, उस वेणुगीत को सुना, भाव नेत्रों से सुना, सुना तो यशोदा मैया ने भी, किंतु सुन करके भी वो सुनी नहीं, बात्सल्य भाव से सुनी, बड़ा अच्छी बंसी बजा रहा है। सखा लोग उनके साथ ही में थे तो ये उन लोगों ने भी सुना, किंतु मुग्ध मोहित नहीं हुए, भाव सिंधु उच्छलित नहीं इनका हुआ। पशु पक्षी कीट पतंग जितने थे ब्रज के, उस बेणीगोद को सुना, सभी बड़े उल्लसित हुए, किंतु गोपियों का जैसा भाव था वो भाव किसी के अंदर में नहीं आया। हुआ क्या, स्मरोदयम, स्मर शब्द का तो बहुत ही गंभीर अर्थ है, किंतु आप लोग यही समझिए मिलने की उत्कंठा, वह प्रेम जिसको इतनी उत्कंठा होती है बेणियों को श्रवण करके, जे अपनी कुल मर्यादा और किसी चीज की याद नहीं रहती, स्मरण नहीं रहता, तो मिलन की उत्कंठा से वो भर गई। आकाशित परोखम कृष्ण सकन, और ये काश्चित देखो नाम नहीं लिया, ये काश्चित माने ही राधिका, ललिता, विशाखा इत्यादि काश्चित, काशी शब्द के लिए राधा जी का अधिकांश रूप में श्रीमद भागवत ने वर्णन किया है, परोक्ष रूप में काशी परोक्षम कृष्णस्य स्वस्य कवि, कृष्ण के वेणु नाद और उनके रूप की महिमा, सौंदर्य की महिमा अपने सखियों से वो वर्णन करने लगे। जब ही वर्णन आरंभ किया तब वर्णी तुम आराधा स्मरणता कृष्ण चेष्टितम, कृष्ण चेष्टितम, कृष्ण कैसे मुरली वेणु बजा रहे हैं, कैसे विहार कर रहे हैं, उनकी लीलाएं कैसी हैं, उनकी चेष्टाएं कैसी हैं, जब बंसी बजा रहे होंगे तो हृदय में उनको भी उनका द्रवित होता होगा, वो किसी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आप लोग समझ जाइए किसकी वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आधा घंटा पूरा
तो काश्चित परोक्षम
कृष्ण से स्वर्ष कर तब वर्णन तुम आरब्ध जो ही वर्णन आरंभ किया उत्कंठा से बोल नहीं सकी कृष्ण से ना सका वर्णन नहीं कर सकी क्यों गला गदगद हो गया स्वर भंग हो गया पुलक रोमांच हो गया कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते ही जो उसको वर्णन करेंगे कैसे वेणुनाद विशेष करके कृष्ण वेणुनाद से क्या करते हैं गोपी गीत का दूसरा श्लोक लिंग शब्द जहां जगव का मनोहर लिंग शब्द का और उसे सभी गोपियां समझने की हमको ही बुला रहे हैं उसी प्रकार से स्मर वेग से उत्कंठा से विक्षिप्त मनसो उनका चित्त विक्षिप्त हो गया बोल नहीं सके क्या वर्णन करेंगी बोल नहीं सके बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार विप्रवास कनक कपिशम वैजयंती समानम रंद्राण वेणु रतर सुदया पूरे अनुगोप बंदे बिंदारण्यम सबदर्मणम प्राप्त कृष्णदास से कीर्तन करो
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे मोहन तेरी बंसी बजे धीरे तेरी बंसी बजे धीरे धीरे तेरी बंसी बजे धीरे धीरे बजे धीरे यमुना के तीरे बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे बजे धीरे 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 यमुना के धीरे धीरे बजे धीरे 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 यमुना के धीरे मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे ओ सखिया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे Oh,
दशा हुई बस वर्णन नहीं कर सकी स्मर बेग से मिलने की उत्कंठा से स्मर मैंने काम कृष्ण की सेवा की वासना अत्यंत ऊंची स्थिति पर पहुंचने पर वो काम कहलाता है वही मिलने की उत्कंठा के रूप में वर्णन कर रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर बहु कृष्ण के तीन रूप हैं बाल गोपाल वात्सल्य रस का आस्वादनी पौगंड वयस सखाओं के साथ गोचारणी इधर से उधर करते हैं सखाओं के आस्वादनी और किशोर वयस कृष्ण अभी किशोर वयस में नौ किशोर वयस में ये गोपियों के आस्वादनीय है। कृष्ण के केश घुघराले और काले लोहिता, लोहिता माने क्या, कुछ थोड़ा सा लालापन लिए हुए केस के ऊपर। मैया ने बन जाते समय में उनको एकत्र बांध दिया है केशों को, घुघरालू अलकों को लेकर के, और उसमें मयूर पंख लगा दिए हैं काले मेघ के ऊपर में। ये केश कैसे हैं, काले मेघ, और उस पर मोर मुकुट का मुकुट जो है, मोर के पंख हैं, वो इंद्रधनुष हैं। जब वर्षा समाप्त होने को होती है, वर्षा खुलने की संभावना होती है, तो विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दशा में, दिशा में वो इंद्रधनुष उगाता है सतरंगी। तो ये मोर के जो पंख हैं, ये कैसे हैं, मानो काली काली घटाओं पर ये इंद्रधनुष, वहां तो विपरीत दशा में, यहां पर एक ही साथ में, उसे देख करके नटवर बपु, मयूर इत्यादि तो नृत्य करने ही लग जाते हैं, समझ सकते हैं उनके इस छवि को देखकर। नटवर बपु वह कहते हैं, नटवर किसी गायन नृत्य अभिनय के समय में जो नृत्य करने वाला, आरंभ करने वाला और नृत्य करने में विशेष पारदर्शी हो, वह नटवर कहलाता है। एक उपमा एक उपमेय, मयूर जैसा कृष्ण मोरकुटी में नृत्य कर रहे, कृष्ण के समान नृत्य करने वाला कोई है? शंकर भी कृष्ण को ही अपना गुरु मानते हैं, यह शास्त्रों में उल्लेख है, तो खुद ही नटवर है। तो ऐसे सुंदर बपु से नृत्य करते हुए मानो त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर के, और समय कर्ण योग कर्णिका आराम, कानों पर कनेर का फूल पीला पीला, काला मेघ के समान केश भी है और बदन भी है, तो वैसा ही है श्याम रंग का। उस पर कर्ण योग, कानों पर कनेर के फूल पीतांबर पहन उसमें धारण कर रखा, विभ्रत भाषक कनक कपिशम, कनक कपिशम जैसे स्वच्छ स्वर्ण है, साफ किया हुआ एकदम, ऐसा वो पीतांबर धारण कर रखा है। क्यों पीतांबर धारण कर रखा है? गोपियों का वह रंग है, इसलिए पीतांबर को उन्होंने धारण कर रखा है। कानों पर कनेर की काफूर पीला पीला, बहुत ही सुगंध, मधुर सुगंधी, और कभी एक कान पर रखे हैं, उसी को दूसरे कान पर रख रहे हैं, मधुवत है। कनक कपिशम वैजयंती चमालम, सात रंगों या पांच रंगों की वैजयंती माला बनती है, बहुत ही सुगंधित, बेली चमेली जूई जाति और मालती, तरह तरह के कुंद, ये सब फूल होते हैं, इनमें मधु होता है, भ्रमर आते हैं, तो इन्हीं, और उसमें तुलसी की मंजरी लगती है, उसमें बहुत मधु होता है, भौरे उस पर गुंजार करते हैं, उस बन माला पर। रंध्रान वेणुराधर सुधर, अधर की सुधा को वेणु, वेणु में भर देते हैं, अधर सुधया, वेणु तो छिद्र युक्त है ना, उसमें छिद है, और कृष्ण के साथ में रह करके किसी को छेद रहा था तो ये क्या हुआ, कृष्ण अपने आप उस छेद को भर रहे हैं, कैसे, अंगुलियों से, उसमें कितने सात या कितने रंध्र रहते हैं, तो उसको भरते हैं।
अधर सुधाया, अपने अधर सुधा को, वो सारों दिशाओं में व्याप्त होकर ग्राहक नहीं पाता, वैकुंठ को भी छोड़ देकर के चला आता है, द्वारका मथुरा को छोड़ करके और वृंदावन में भी पहुंच करके और सब लोगों के रसों के आश्रितों को छोड़कर कहां आता है, अपने अधिकारी योग्य गोपियों के कानों में हृदय में प्रवेश करता है और उनके मन को चोरी कर कर जबरदस्ती कृष्ण के पक्ष में वेणुनाद ही ला देता है। इसलिए दिशाओं से भ्रमित होकर के गोपियां कृष्ण के निकट जहां बंसी बजा रहे हैं वहां पर सभी दौड़ रही हैं। अजगमो अन्यो अन्नम अलक्षितो उद्यमा, सब कामों को विसार कर जो दोहन कर रही थी, पतियों को खिला रही थी, सेवा कर रही थी, अग्नों में भूषण लगा रही थी, सबको छोड़ करके वो कृष्ण के पास में से बिंदारण्यम, ऐसा वृंदावन कैसा, सरस स्वच्छ जलम इत्यादि जो दिखा, जो पहले जो वर्णन किया उस वृंदावन में स्वपद रमणम, कृष्ण के चरणों में बहुत से चिन्ह हैं, उनके चरणों के चिन्ह वृंदावन के रेतियों में वो उगाते हैं, जिसको पृथ्वी बड़े आनंद से धारण करती है, प्राविशत गीत के देखी। और सखा लोग क्या कर रहे, उनकी गीति कीर्ति वाह 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 बहुत सुंदर, साधु 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 कर रहे हैं और उनकी महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। इति वेणु रमन राजन सर्वभूतम, समस्त प्राणियों के लिए यह वेणु राज वेणु राव मनोहर है, किंतु ब्रज स्त्रियां एक दूसरे से वर्णन करते 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 अपने आप को विस्मित हो गई, क्या कह रही हैं, अक्ष्मतांग फलमिदं न परम विदाम सखा पशुन अनुवेश वक्त्रं ब्रजेश सुतयो अनुबेन जुष्टम जैवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष अक्षमतांग फलमिदं। सखी रे फलमिदं, यही सार्थकता है, बोल नहीं सकी ना, क्या इनको बोलना है ये बोल नहीं सकी पहले, इसलिए बस आंखों की यही सार्थकता है, नेत्रों की यही सार्थकता है। फलमिदम अखनवतान, आंख वालों का, नेत्र वालों का, जिनको नेत्र है और उस नेत्र का फलमिदम, बस 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 यही, क्या गला भराया, एकदम बोल नहीं सके, थोड़ी देर के बाद में कुछ शांत हुई, वेग शांत हुआ उनका, तो कहे सख्या पशुन अनुवेश यतोर वयस्य, अपने वयस्यों को, सखाओं को और पशुओं गायों को लेकर एक वन से दूसरे वन में जो जा रहे हैं, वक्त्रम प्रजेश सुतयो अनुबेणु जुष्टम, उनमें ब्रजेश सुतयो कृष्ण और राम बलराम जो वेणुवादन कर रहे हो मथुर रूप में, उनके वक्त्रों को, उनके मुखारविंद को, उनके नैनों की तरफ में देखने के लिए जिसको, और वो अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम अनुरक्त होकर के अपने आंखों से कटाक्ष कर रहे हैं, देखने रहे हैं, जिसे राजा इत्यादि के लिए ललिता विशाखा के लिए प्रतीक्षा में जो रत हैं। ब्रजेश सुतयो दो उनके पुत्र हैं, किसके, नंद बाबा के, यद्यपि बलदेव जी उनके पुत्र नहीं हैं, किंतु गोपियों में ये प्रसिद्ध है कि वो अपने नंद बाबा को ही बाबा करते थे, वसुदेव जी को बाबा नहीं पिता नहीं कहते थे, नंद बाबा को ही अपना पिताजी मानते थे, बाबा बाबा कहते थे। इसलिए ब्रजेश सुतयो इनके दोनों पुत्र बलदेव। अनुबेनु दुष्टम, उनमें से जो अनु पीछे चल रहे हैं, भाव तो ये है किंतु भाव को गोपन करने के लिए अवस्था भाव से जो कृष्ण में हमारा विशेष अनुराग प्रकट न हो जाए, इसलिए वो तो दोनों को ही कह रही है जो दोनों का मुखार बिंद जिसने देखा नहीं बंसी बजाते हुए, उनके नेत्रों की सफलता नहीं है, उन आंखों पर बाज पड़े वज्र पड़े जो कृष्ण का ऐसा दर्शन और बलदेव का नहीं करते, किंतु उनका भाव ये है ब्रजेश सुतयो इन दोनों में से अणु बेणु जुष्टम जो पीछे पीछे चल रहा है और बेणु बजा रहा है, कृष्ण तो सिंगा बजते हैं राम तो सिंगा बजाते हैं, इसलिए बेणु जो बजा रहे हैं जय वीत मनोरक्त कटाक्ष, उनके निपीतम अनुरक्त कटाक्ष, उनके कटाक्ष जो हो रहे हैं उनका पान नहीं किया, केवल दर्शन ही नहीं पान नहीं किया, उन नैनों की कोई भी सार्थकता नहीं। और भी एक भाव है ब्रजेश सुतयो, कुछ गोपियां हैं जिनका संबंध राधिका जी से है, राधिका जी को अपना स्वामिनी मानती है और कृष्ण को उनका प्रियतम मानती है, डायरेक्ट संबंध नहीं। हम लोगों के अनुगत जितने भी लोग हैं रूप गोस्वामी जी, यही भाव है सबका, कृष्ण हमारी डायरेक्ट हमारे प्रभु नहीं स्वामी नहीं, स्वामिनी जी हमारी राधिका जी है। तो उस भाव की जो गोपियां हैं वो कृष्ण को नहीं बल्कि राधा जी के साथ में कृष्ण को दर्शन करना चाहती है, तो उनका भाव क्या है ब्रजेश सुतयो सुताश्च सुतयो, सुता सुता माने पुत्री, सुत माने पुत्र, वृंदावन में ब्रज में दो ब्रजेश हैं, एक है नंद बाबा 7 लाख गाय वाली 9 लाख गाय वाली और एक 11 लाख गाय वाली हैं विश्वानु बाबा, तो उनकी सुता कौन विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका, वो अनुबेनु जुष्टम कृष्ण ने मुरली बजाई, राधिका जी ने झपट कर छीन लिया जो तुमको बजाने नहीं आती, और अनुबेनु पीछे से बजाने लगी कृष्ण मुग्ध हो गए अनुबेनु जुष्टम। उस अवस्था में राधा जी और कृष्ण के मुखारविंद का जिन्होंने दर्शन नहीं किया उनकी आंखें निरर्थक है, सखी चलो दर्शन तो करें, हम नहीं जाएंगे, यदि सुन लिया सास और सासुरी ने तो क्या होगा, घर से निकाल देंगे, कहे नहीं तुमको निकालना नहीं होगा, चलो एक बार दूर से दर्शन तो करो कैसा मनोहर है, अपने आप कूल कुलकानी और सब कुछ तुम भूल जाएगी, चलो यहीं से थोड़ा सा अधिक दूर जाकर के मत देखो यहीं से देखो, सचमुच में वही हुआ, कृष्ण की मुरली ही वेणी ध्वनि एक ऐसी है कि सब कुछ को वो भुला देती है। तो इस प्रकार से उस भाव वाली जो गोपियां हैं ये देख दर्शन करना चाहती हैं और वो कह रही हैं कि चलो सखी, राधा जी जहां पर वेणु बजा रही हैं कृष्ण को सिखला रही हैं वेणु, वहां पर उनके मुखारविंद का दर्शन जिसने नहीं किया ये आंखें निगोड़ी, हम लोगों में भी यदि उत्कंठा न आए सुन करके भी भागवत तो हमारे नेत्र भी इसी तरह से जड़ चीजें दर्शन करते हैं, उसी में लुप्त हो जाते हैं, उस भाव को भूल जाते हैं। एक दिन भूलना भी पड़ेगा। छुत प्रवाल बरहस्तव को गोप्या की माचर दैम कुशल अश्मेणु दामोदरा सुधाम गोपिका नाम भुंगते स्वयं जद वशिष्ठ रंग गण्य हिस्सो अश्रु पहुंच। हे गोपियों, इस वेणु ने कौन सी तपस्या की? नीरस बांस, बांस की एक क्या
टुकड़ा,
एक टुकड़ा बांस का सूखा सूखा नीरस, कौन सा आचरण किया, अनुष्ठान किया, तप योग तपस्या की। कुशलस्म वेणु दामोदर दामोदर आधर सुधाम गोपिका नाम भूंगते स्वयं। हे गोपियों, ये वेणु ने कौन सी तपस्या की जिसे दामोदर की अधर सुधा का पान करता है पुरुष होकर के भी। जन्म सिद्ध हम लोग कृष्ण के साथ में बचपन से खेली। गोपियां कहती हैं हमारे साथ में खेले, गोप जाति में है और ये वंश जाति में है, ये बांस की जाति में होकर के हम गोपियों के धन को और हमारे सामने हमारी हंसी उड़ाते हुए और पान कर रही है। भुंगते स्वयं जद वशिष्ठ रसम, तनिक भी बचाती नहीं, कृष्ण के अधर सुधा को पान कर लेती है। उसे मालूम होता है कि इनका अधर सुधा कुछ पीला हो गया, अधर निशेष रूप से पीती है। अथवा अवशिष्ट रसम, गोपियां जिसको पान करके अवशिष्ट रख देती हैं और इसको ये पान करता है, इसलिए उसके वंश की माताएं और पिता और पूर्वज लोग बड़ा गर्व अनुभव करते हैं। कौन? हृदय नदियां और झील सरोवर, इनके पानी से ये बांस बढ़ता है, इनके वंश बढ़ते हैं। तो ये पानी नहीं दूध है, अपने दूध से ये उस बांस को जो सूखा बांस था उसको सींचती हैं और देखती हैं वो हमारे कुल में एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो कृष्ण के अधर सुधा का पान कर रहा है, जो गोपियों के लिए ये है और इसको पाना कितना भारी सौभाग्यवान है। ये वो आनंद को संभाल नहीं पाती, इसलिए उसमें कमल विकसित हो रहे हैं, उसके यहां मिस वो बड़ी प्रसन्न हो रही है और वृक्ष हैं, वृक्ष थे आज हमारे वंश में, वृक्षों में भी बांस भी एक वृक्ष ही है, हमारे वंश में ये बांस उत्पन्न हुआ, कुल में एक विष्णु भक्त भगवत भक्त उत्पन्न हुआ, इसलिए आज हमारा कितना गौरव, आनंद से भर रहे हैं और उनको आशीष दे रहे हैं। वृंदावनम सखी गोविंद वितनेत कीर्ति देवकी सुत पदम लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नित्यम प्रेक्षा दिशा नवतान समस्त वृंदावनम। ऐसा शरतकालीन वृंदावन पुष्पों के सुगंध से भरा हुआ आज पृथ्वी की कृति है। यह पृथ्वी की कृति किस लिए? कृष्ण इस पृथ्वी पर, विशेष करके उनकी प्रेम की ध्वजा गोपियां हैं। गोपियां जहां हैं वृंदावन, उस वृंदावन में देवी सुध पदाम जो लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु अनुमत्त मयूर नित्यम प्रेक्षा दिशान अवतान समस्त सप्तम। कृष्ण की वेणु गीत को सुनकर के मयूर मत्त हो गए और वेणु की ध्वनि पर नृत्य करने लगे। जिस समय नृत्य करने लगे तो कृष्ण भी कहते हैं साधु साधु, और वो भी कृष्ण को कहते हैं साधु साधु तेरी बंसी के ध्वनि पर हम नृत्य कर रहे हैं। और एक पंख गिरा दिया पुरस्कार के रूप में और कृष्ण ने उसको माथे पर रख लिया, इसलिए माथे पर रखते हैं। उस समय कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनकर मयूर नृत्य करने लगे और जितने भी वहां पर पशु पक्षी थे सभी स्तब्ध होकर के उनके नृत्य को और कृष्ण की बंसी को सुनने लगे। धन्यास्व मूढ़ मतयो अपहरण्य। तात्पर्य क्या है? ओहो, ये वेणु ने ऐसा कठोर कोई तपस्या किया जिसे उसको सौभाग्य मिला कृष्ण के रूप दर्शन करने का, उनके अधरों पर बैठने का, और हम तो ऐसा कर नहीं सकते, कृष्ण से मिल नहीं सकते, लाखों विघ्न और बाधाएं हैं, पास पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। इसलिए आज हमारा सौभाग्य नहीं, यदि बेड़ी होकर के सूखा हुआ बेड़ू भी हम होकर के पास की डंडी भी होकर के आ और कृष्ण के अधरों पर बैठते और उनके वेणु गीत को सुनते हमारा जीवन सार्थक हो जाता। धन्यासमूढ़ मतयो अपहरण्य। जानंद नंदन उपात्त विचित्र वेशम धन्यासमूढ़ मतयो। देखो नीच जाति में पशु जाति में हिरणिया उत्पन्न हुई है और ये नंदनंदनम उपात्त विचित्र वेशम, कृष्ण के इस विचित्र वेश को देख करके नटवर बकू इत्यादि देख करके ये और उनका रूप दर्शन करके और आकर्ण वेणु रणितम उनके वेणु की ध्वनि सुन करके अपने पतियों के साथ में कृष्ण साथ पतियों के साथ में अपने बड़े बड़े नेत्रों से कमल जैसे चंचल नयनों से और कृष्ण की तरफ में देख रहे हैं और कृष्ण भी उनके इसको ग्रहण कर रहे हैं नेत्रों के माध्यम से। गोपियों का कितना, इन हिरणियों का कितना शोभा अपने पतियों के साथ। और हमारे पति यदि गंध और भनक भी लग गई तो हमें शासन करेंगे, आने नहीं देंगे। इसलिए यदि जन्म भी ले तो कहां जन्म, हिरणियों का जन्म और कृष्ण की मधुर बंसी को हम लोग श्रवण कर सकते। इसी तरह से गोपियां जहां भी कृष्ण के इन भावों को पाती हैं वे उसी जन्म लेने के लिए कृष्ण के साथ में किसी प्रकार से हमारा संपर्क हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। यहां तक कि उन पशुओं की बातें और गायों की बातों के गाय दूध घास चरती हैं और बंसी गीत यदि वेणु गीत यदि सुना तो कानों को दोना बना लेती हैं और उधर ही कान को चलाती हैं, भाव में विभोर हो जाती हैं, नेत्रों से कृष्ण को अपने हृदय में ले करके उनका आलिंगन करती हैं, घास को खाना और गिल्ला बंद कर देती हैं। बाहरे बछड़े क्या करते हैं, मैया का दूध पी रहे हैं और दूध यहां आया है और कृष्ण का वेणु नाद आया सुना और कान से सुनते ही भूल गए, न बाहर फेंक रहे हैं उगल रहे हैं न नीचे ले जा रहे हैं, गले में ही अटका हुआ है उनका, ऐसा कृष्ण का वेणु नाद। ओह, बछड़ों जैसा तो हम नहीं, गाय जैसा भाव हमें नहीं हुआ। ओह, गायों का कितना सौभाग्य, इन सखाओं का कितना सौभाग्य है, हम तो कृष्ण के साथ में रहने से, और सखा लोग क्या करते हैं दिन रात उनके साथ में रहते, गोचारण दिन भर उनके साथ में, गाय उनके साथ में, बछड़ों को अपने हाथ से कितना ये करते हैं, हमें कहां इतना सौभाग्य। यदि हम मर करके यदि वही होती तो हमारा ये सौभाग्य होता। इसी तरह से जो कुछ भी देख रहे हैं, पुनः पुलिंद उर्गाय पदाप जराग शिकुम कमेन दरिता स्तन मन विदेन तदर्शन स्मर रुज तृणरूषितेना लिपंत आनंद कुचल उज्जहा। तुम इसका जरा वर्णन कर दो तो पुनः पुलिंद बोलो बोलो गोवर्धन की भिलनिया भी धन्य है, भिलनी जाति जो कृष्ण के चरणों में लगे हुए महावर को अलता को कुमकुम जो घासों पर लग जाता है और सवेरे कंडे के लिए या लकड़ी के लिए आती है चुनने के लिए और उसे देख करके कृष्ण के पैरों से लगा हुआ वो उपराग कुमकुम और काम में भर जाती है और उसे पोंछ करके अपने सब शरीरों पर लगाती है। आ ये पुण्य पुलिंदा, ये पुलिंद की जो स्त्रियां हैं यही धन्य है रमणिया धन्य। हम लोग का ऐसा सौभाग्य का, किंतु कुमकुम है कहाँ का, उन्हीं गोपियों का है, राधा जी का है और वहां पर लगा उसको देख करके ये तो उसका यह सौभाग्य देख करके कहते हैं कि हो हमारा इतना सौभाग्य। इसी तरह से वो वर्णन कर रही हैं, ये वेणु गीत का तात्पर्य, ये पूर्व राग का विषय। कृष्णदास
राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम